जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
तुम हृदय के पास हो है पास जितनी सांस ये दूर हो तुम दूर जितनी चीर मिलन की आस है तुम मधुर हो मधुर जितनी प्रीति की मधु भावना किंतु कटु इतनी कि जितनी स्वार्थों की साधना तुम सरल हो सरल जितनी शिशु हृदय की भावना तुम कुटिल हो कुटिल जितनी है कपट की कामना तुम विकल हो विकल जितनी मृदु मिलन की कामना, शांत हो तुम शांत जितनी है विरागी भावना, तुम करुण हो करुण जितनी विकल आंसू धार है, तुम निठुर हो निठुर जितना मृत्यु का प्रहार है, तुम हृदय के पास हो है पास जितनी सांसिए, दूर हो तुम दूर जितनी चीर मिलन की आस है। एक विरोधाभास प्रकट हुआ है। कवि कहता है तुम पास हो और तुम दूर भी हो, वो कहता है तुम मधुर हो परंतु कटु भी हो, तुम सरल हो पर कुटिल भी हो, विकल हो पर शांत भी हो, करुण हो पर निठुर भी हो। या प्रेम एक विरोधाभास है, जहां दो अपोजिट्स एक साथ आए हैं। वास्तव में प्रेम रहस्य है, और जितना प्रेम को हमने समझा है, हो सकता है वो परिभाषा अधूरी है। प्रेम अपने अंदर सब कुछ समाये हुए है, हमें लगता है मौन या ध्वनि मौन का शत्रु है, ध्वनि मौन का शत्रु है, परंतु ध्वनि से ही मौन का द्वार खुलता है। हमें लगता है विकार हमारे शत्रु है, परंतु ये विकार ही निर्विकार की ओर ले जाते हैं। हमें लगता है ये घृणा प्रेम का शत्रु है, परंतु ये घृणा ही प्रेम की ओर ले जाती है। हमारे मन में विरोधाभास भरा हुआ है, इसलिए निरंतर द्वंद्व चलते रहता है। एक पर क्यों ना ऐसा किया जाए कि जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं उसी को द्वार बना दे। एकमात्र ऐसी एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा विकारों को अपना दुश्मन नहीं समझो, उसका क्या करो रूप ही बदल दो। कौन सी मुरली है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों की चर्चा जिसमें है, और उदाहरण दिया यदि कोई राजा है और उस राजा को कोई शत्रु है और उस राजा ने उस शत्रु को हरा दिया तो वो बदला लेगा। उसी तरह तुम विकारों को अपना शत्रु समझते हो और उनको हराते हो तो वो क्या करते हैं? फिर बदला लेते हैं। इसलिए क्या करो? उनका रूप ही बदल दो। और उस मुरली में फिर एक एक वर्णन है। काम के साथ क्या करो, क्रोध के साथ क्या करो, लोभ के साथ, मोह के साथ और अहंकार के साथ, उसके रूप को ही बदल दो। क्योंकि जो मन निरंतर द्वंद से भरा है उसमें हार जीत हार जीत हार जीत हार जीत होती रहती है, और फिर वो दुखी हो जाता है और फिर आगे नहीं बढ़ जाता बढ़ सकता, चाहे डाइट या ब्रह्मचर्य या संबंध रिलेशनशिप्स। किसी एक व्यक्ति से हमें दूर होना है तो निरंतर संघर्ष चलता है। ब्रह्मचर्य काम से लड़ाई चालू है, ब्रह्म मुहूर्त निद्रा से लड़ाई चालू है, या कोई भी विकार, या मौन और बोलचाल लड़ाई चालू है, जब मौन में है तो बोलचाल की इच्छा नहीं, और जब बोल रहे हैं तो मौन खो जाता है। कुक्ड फूड अनकुक्ड फूड, जब इधर है तो वो खींचता है और उधर गए तो ये खींचता है। विरोधाभास को स्वीकार करना और उसी को सीढ़ी बना देना और आगे बढ़ जाना, वो भी अनुभव जरूरी था। इसलिए कवि क्या कहता है, तुम हृदय के पास हो है पास जितनी सांस, दूर हो तुम जितनी चिर मिलन की आस। इसलिए दूर होना भी आवश्यक है, दूर होने के बाद ही व्यक्ति का महत्व समझ में आता है और मिलन की आस जागती है। तुम मधुर हो मधुर जितनी प्रीति की मृदु भावना, किंतु कटु इतनी की जितनी स्वार्थ की स्वार्थों की साधना। और वास्तव में जो हमारे भीतर है वही हमें बाहर दिखाई देता है। भीतर मधुरता है तो बाहर मधुरता, भीतर कटुता है तो बाहर कटुता, भीतर सरलता है तो बाहर सरलता, बाहर भीतर कुटिल तो बाहर भी कुटिल, भीतर विकल है व्याकुलता है तो बाहर भी व्याकुल। शांत हो तुम शांत जितनी है विरागी भावना, तुम करुण हो करुण जितनी विकल आसुधार, तुम निठुर हो निठुर जितनी मृत्यु का प्रहार। एक्सेप्ट द अपोजिट्स, ये भी सही है तो वो भी सही है। इसका भी प्रकाश का महत्व तभी समझ में आता है जब अंधकार से गुजरते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि अंधकार में जाओ, वो तो न कहने के बाद में भी व्यक्ति जाता है। पूर्णता का अनुभव तब समझ में आता है जब अपूर्ण होते हैं। अभी पुरुषोत्तम भाई कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे गीत के लिए, कि हम क्या है, अधूरे हैं। बचपन में हमारा एक दोस्त था, वो एक गीत गाता था। उस गीत में अभी भी कुछ याद आया था, जे जे हवे से जीवनी ते सर्वा आहे लाभले, तरी ही उरे काही उने तू पूर्तता होशी लगा। कि जीवन में जो जो चाहता, एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से कह रहा है कि जीवन में जो जो चाहता मुझे सब मिल गया, फिर भी कुछ तो है जो अधूरा है, क्या तुम वो अधूरापन मिटाओगे। ती पूर्तता होशील का सखी मंद साल्या तारका, कि कुछ तो है जो अधूरा है, कुछ तो है जो अपूर्ण है, क्या तुम मुझे पूरा करोगे। और वास्तव में ये केवल उस परमात्मा के लिए ही कहा जा सकता है जो पूर्ण है। तो आज के महावाक्य तीन सूत्र है जो कल भी हमने देखा था, क्या करो सुबह सुबह आत्मा का टाइम टेबल बनाओ। एक है शरीर का टाइम टेबल, ये करना है वो करना है, यहां जाना है यहां जाना है, इससे मिलना है उससे मिलना है। एक है आत्मा का टाइम टेबल, कौन सी कमजोरी अभी बाकी है, कौन सी कमजोरी पर काम करना है, क्या किया जाए, व्हाट स्टेप्स। दूसरा है कर्मयोग, भाषण दे रहे हैं, दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, दूसरों में उमंग उत्साह भर रहे हैं, दूसरों को सब कुछ हम सिखा रहे हैं बता रहे हैं, या फिर जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं, जो सेवा दी गई है वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु भीतर खालीपन है। वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आदत हो गई है, पर भीतर क्या है, अचानक खालीपन आ गया है। एक भीतर जो मौन प्रवाह था उससे नाता टूट गया। तो बाबा ने कहा कर्म और योग इसको चेक करो कि बाहर की सेवा करते करते व्यक्ति क्या हो जाता है, भीतर से थक जाता है। और कौन सी सेवा? निस्वार्थ सेवा, विश्व कल्याण की सेवा, दूसरों को प्रेरित करने की सेवा, साधारण सेवा नहीं, महान सेवा, लाखों करोड़ों आत्माओं के जीवन को बदलने की सेवा। ये सेवा कहाँ चालू है? बाहर। परंतु ये सेवा करते करते भीतर क्या हो जाता है? खालीपन आ जाता है। उसको चेक करो, वो कर्मयोग। और सबसे तीसरा सूत्र है, दुआए दो दुआए लो। ये सबसे आसान है या सबसे कठिन? बाबा कहते हैं सबसे आसान कार्य है। आसान भी है और कठिन भी है। तो ये तीन आज के सूत्र है। और जो उसने कहा है वो करना है। केवल कहना नहीं है, करना है। जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, स्पेशलिस्ट के पास विदेश में, और स्पेशलिस्ट की फीस बहुत ज़्यादा होती है। एक होते हैं जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर, और एक होते हैं स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट अपनी जांच पूरी करता है और फिर मरीज से कहता है मेरी फीस। मरीज कहता है कितनी? वो कहते हैं $1,000। पेशेंट कहता है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे पास इतने नहीं है। डॉक्टर कहता है ठीक है $500 दे दो। वो कहते हैं $500 ये भी मेरे पास नहीं है। डॉक्टर कहता है ठीक है $250 दे दो। वो कहते हैं $250 किसके पास है यहाँ पर? डॉक्टर कहता है कम से कम $100 तो दे दो। वो कहता है मेरे पास $100 भी नहीं है। डॉक्टर कहता है जितने हैं उतने दे दो। वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो मेरे पास आए क्यों? पेशेंट कहता है जब सेहत की बात होती है तो मैं आगे पीछे थोड़ी देखता हूं। विरोधाभास है, परिस्थिति, क्रिया, विचार, असमन्वय है। कहते कुछ और करते कुछ। टाइम टेबल, अपने आप को ही देखना, यह सबसे बड़ी कला है। और वो भी कैसे? सूक्ष्म। दूसरों को देखना बहुत ही आसान है, दूसरों की गलतियां निकालना उससे भी आसान है। खुद को देखना, ये पुरुषार्थ। तो बाबा के महावाक्य, आज का 77th डे। आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ, हर एक अपने आप, हर एक अमृत वेले से अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। ये टाइम टेबल 5 बजे के बाद नहीं बनाना है। कब बनाना है? सुबह 5 बजे के बाद नहीं, अमृत वेले बनाना है। क्योंकि वो जो समय है 3 घंटे का, 3 घंटे वाली चर्चा बहुत दिनों से नहीं की है। 2 से 5 चल रहा है या गया? चला गया, वापस आ जाओ। वैसे ऑफिशियल टाइम बताया 3 से 5, पर मार्जिन रखनी है थोड़ी ज्यादा। कभी ऊपर नीचे अगर होता भी है 3 से 5 वाला नहीं छूटना चाहिए बस। ठीक है, तो अमृत वेला क्या करो, अपना टाइम टेबल बनाओ और सुबह उठते ही डिसाइड कर लो, आँख खुली, कुछ तो जो हमें करना है और जो नहीं कर पाते उसके बारे में पहले चिंतन करना है। चाहे भोजन, ब्रह्मचर्य, अमृत वेला, संबंध, करियर, एनीथिंग। क्योंकि वो टाइम बहुत पावरफुल समय है, उसका केवल योग नहीं करना है, उसमें उसका फायदा उठाना है, क्योंकि उस समय सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, जो बैरियर है प्री कॉन्शियस का वो उठ गया है, जो सोचोगे वो सीधा अंदर चला जाएगा। मिल्क द टाइम, मिल्क द सिचुएशन, मिल्क अर्थात एक्सप्लॉइट करना, उसका शोषण करना, फायदा उठा लेना उसका। अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है, जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना लेते हो वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा, इतना अटेंशन इसमें, अटेंशन चेकिंग कम है, ऐसा टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करो। क्या करना है सुबह सुबह कि मेरे पुरुषार्थ में कौन सी कमी है, कि आज किस विषय पर और किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ावे। हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि आज के दिन में क्या क्या प्रैक्टिकल में लाएंगे और कितनी परसेंटेज तक इस बात का पुरुषार्थ में लाएंगे। अपनी दिनचर्या के साथ यह सेट करो और फिर रात को यह चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके। यदि नहीं कर सके तो उसका कारण एनालिसिस। पहले क्या है, प्लानिंग, पहला विजुअलाइजेशन, प्लानिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन, रात में फिर एनालिसिस, हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ठीक है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप नहीं, सोचा था ऐसा करेंगे पर नहीं हो पाया, तो चलो ठीक है, कारण क्या है एक या दो। अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन उसी पर पहले सोचना है। जितना हम अपने आप को दूर से देखते हैं उतना हम अच्छे से देख पाते हैं। जैसे एक अफ्रीकन स्टोरी है जिसमें एक पिता है, काल्पनिक कहानी है, जो सोचता है कि उसका जो बेटा है ना बहुत ही मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आता है, और वो जो पिता है सोचता है मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, तो संसार का सारा ज्ञान बटोर लेता है, काल्पनिक कहानी है, और वो सारे ज्ञान को एक पोटली में भरता है और कहता है कि ये ज्ञान अब मैं किसी को नहीं दूंगा। जैसे मेरा बेटा मूर्ख है, मैं बाकी लोगों को देखता हूँ वो भी मूर्ख है, मेरा बेटा तो सबसे ज़्यादा मूर्ख है पर ये बाकी जो है ये सब भी मूर्ख है, और ज्ञान केवल मेरे पास है, तो सारा ज्ञान बटोरता है, एक पोटली में भरता है और सोचता है इस ज्ञान को मैं कहीं छुपा दूँ। वो पुत्र देखता है पिता का व्यवहार थोड़ा संदिग्ध है कुछ दिनों से, और उसका पीछा करता है, और एक रात पिता जाते हैं वो सारे ज्ञान की पोटली को कहीं छिपाने के लिए, ताकि किसी को यह ज्ञान ना मिले, और वो एक झाड़ के पास पहुँचते हैं और सोचते हैं इस झाड़ के ऊपर इस ज्ञान की पोटली को छिपा दूंगा, पर पोटली मेरी आंखों के सामने रहनी चाहिए, तो वो पोटली को, वो जो बैग होती है, छाती पर रखते हैं और चढ़ने की कोशिश करते हैं पेड़ पर। वो पुत्र छुपके से दूर से देख रहा है झाड़ से, झाड़ की ओट से, और जब देखता है कि पिता चढ़ नहीं पा रहे तो जोर से चिल्लाते हैं, पिताजी ये अच्छा होगा अगर आप पोटली पीछे रखो तो। पिता कहते तुम इतने बुद्धिमान कहां से हो गए। वो कहता मैं बुद्धिमान नहीं हूं पर मैं दूर से देख रहा हूं ना, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है। अपनी समस्याओं को दूर से देखना है, जितना दूर से उसे देखेंगे उतनी वो स्पष्ट दिखाई देगी। हम उसके इतने नजदीक है कि उसमें उलझ गए, अपने डिपार्टमेंट में, अपने बॉस में, अपने साथियों में, अपने जूनियर्स में, कमरे में, जो भी, या स्थान में। इसलिए जो महान लेखक होते हैं या जो स्टोरी राइटर्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्मों की स्टोरीज जो लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, वो देश से बाहर चले जाते हैं, पहले तो अपने कमरे से दूर, देश से बाहर, किसी और देश में चले जाते हैं जहाँ का स्थान अलग, कमरा अलग, टाइम जोन ही अलग, लोग अलग, सब कुछ अलग। वहां जाकर एकांत में बैठकर सोचते हैं, चिंतन करते हैं और लिखते हैं, फिर तो न्यू आइडियाज आती है। कमरे में बैठे बैठे आइडियाज नहीं आती है, पुरानी आइडियाज। थोड़ा छत पे चले जाओ, कहीं एकांत में बैठो और वही समस्या दूसरे अर्थों में दूर से जब देखते हैं तो दिखाई देती है। तो सबसे पहला क्या करो, टाइम टेबल बनाओ। कब बनाओ, सुबह सुबह इट्स द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है अमृत वेला। केवल योग ही नहीं करना है उस समय, बहुत सारे फायदे वाले काम करने हैं आपने। भाषण लिखना है तो सुबह सुबह लिखो, कविता लिखनी है तो सुबह सुबह लिखो, कोई सिंगर है उसे सिंगिंग की प्रैक्टिस, वो भी सुबह सुबह, तो उसको और ज्यादा समझ में आता है उसका। ये जो जिम वाले होते हैं, जो जिम करते हैं ना, उनका जिम का टाइम क्या होता है पता है? 2 से 5, 2 से 4, 2 बजे उठते हैं, 2 घंटा जिम करते हैं और सीधा जाते हैं आइस वाटर बाथ, वो टब होता है कोल्ड, उसमें डूब जाते हैं। ये टाइमिंग है, क्योंकि उनको दिन में वो नहीं होता है इतना। पोएट्स, सिंगर्स, राइटर्स, ऑथर्स, स्कल्प्टर्स, पेंटर्स, सारे चोर, सभी नई नई आइडियाज आती है। दूसरा, हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है ये नहीं है चेक करो, स्वयं पावरफुल बनो। उसके लिए अमृत वेले से लेके हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन। तो दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरों की सेवा करते रहते दिन भर तो क्या हो जाता है, खुद अपने आप को भूल जाते हैं, इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता, इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े कर्म और योग। कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज या बैलेंस की थोड़ी कमी है, सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते उतना तन मन धन सेवा में लगाते, उसी प्रमाण 1 का लाख गुना जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इसका कारण है कर्म योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में प्रोग्राम, वैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। यह टेंशन कम है, फिर कह देते हो बिजी रहे इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, फिर डबल फायदा नहीं हो सकता। क्या करना है? सेवा करो, वो सब करो, बट इंपॉर्टेंट क्या है? खुद की स्थिति। इसके लिए संकल्प पर काम करना है। संकल्प तीव्र ऊर्जा है, बहुत पावर है उसमें। अभी अभी मुरली सुनी 27 नवंबर 1989 की, शुभ भावना शुभकामना ये सब क्या है? संकल्प ही तो है। यहां बैठे बैठे किसी दूर बैठी आत्मा की सेवा की जा सकती है, उनके विचारों में तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, यहां से उन्हें संदेश दिया जा सकता है। टेलीपैथी, क्लायर ऑडियंस, क्लायर वॉयंस, आकाशिक रिकॉर्ड्स, एनर्जी ट्रांसफरेंस, उनको अनुभव होगा कि कोई तरंग आई और उसने मुझे शक्तिशाली बनाया। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, शुभ भावनाओं में बहुत पावर है, बहुत पावर। तीसरा, दुआ दो दुआ लो। दुआ किससे मिलती है? जो संतुष्ट रहे सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होगी। और कुछ नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता कोई बात नहीं, ये बात तो भूलना नहीं है, भाषण का धारणाओं से कोई संबंध नहीं है। भाषण एक कला मात्र है, लेक्चरिंग वो भी आवश्यक है, कलाओं में आता है, परंतु वो सब कुछ नहीं है। भाषण नहीं करना था कोई बात नहीं, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो, डैश सबको देनी है और डैश लेनी है। दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो, प्यार दो प्यार लो, नेकी दो नेकी लो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से रात तक यह कार्य करो, दुआएं देनी है दुआएं लेनी है। तो आज 4 होमवर्क है, उसमें से तीसरा जो होमवर्क है वो है, रात को सोते समय ये सोचो कि आज जिस जिस से मैं मिला उसको अच्छी नींद आ जाए। लोगों को नींद नहीं आती ना। रात को नींद ही नहीं आती, क्या करे। एक व्यक्ति भाषण देता है 1 घंटा तक, और सभा से भाषण के बाद एक व्यक्ति उठकर आता है और उसको धन्यवाद देता है, कहता है ऐसा भाषण मैंने आज तक नहीं सुना। आपने आपके भाषण से मेरी 10 साल की बीमारी को ठीक कर दिया। कौन सी बीमारी? अनिद्रा की, इंसोमनिया। क्योंकि आपके भाषण में जो आज नींद आई, ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आई थी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने भाषण के लिए। ब्राह्मणों के 2 समय अच्छी नींद के, एक अमृत वेला और दूसरा मुरली। अच्छी नींद आती है। तो क्या करना है? ये संकल्प, इसी संसार में इतनी सारी आत्माएं हैं और इतना दुख है, लोग सो नहीं पाते रात रात भर। तो सोचो आज जिस समय मिला उसको कम से कम अच्छी नींद आ जाए, ये एक संकल्प। दूसरा, स्माइल मेडिटेशन। आज दिन भर में जिसको भी मिलो या जिससे भी आंखें मिले, उनके लिए क्या निकले? दुआएं, इसका कल्याण हो जाए, इसको परमात्मा परिचय मिल जाए, इसकी बुद्धि स्थिर हो जाए जो भटक रही है। संसार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत जिनमें कलाएं हैं, परंतु भगवान को नहीं जानते। हम सब में हो सकता है उनसे 1% भी नहीं है, इतने ज्यादा होशियार लोग हैं दुनिया में, भाषण कला में, कोई कोई उनके स्किल्स में, बोलने में, सब बातों में बहुत बहुत आगे है। हम शायद उनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु एक चीज तो मिसिंग है, जीवन का लक्ष्य उन्होंने नहीं जाना है। तो उनके लिए संकल्प करेंगे कि उनका भी कल्याण हो जाए, उन्हें भी बाबा का परिचय मिल जाए। और चौथा होमवर्क है, 2 हाथ बनाने हैं, दुआएं दो और दुआएं लो, देते रहो, कोई कैसा भी हो। पहला कार्य है ये सर्विस वाला, कि जो भी सेवा आज की, वो ड्यूटी समझ के की या उसमें प्रेम केंद्र था, कर्मयोग था। तो ये 4 कार्य। तो एक बात धारण करो, दुआएं सबको देनी है, दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक हर कार्य करो, दुआएं देनी, दुआ लेनी, फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो, दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियां आप ही आ जाएगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। क्या कहा? कोई दुख दे, और इसमें लोग एक्सपर्ट है, किसमें? देने में। वो उसमें एक्सपर्ट है। हम किसमें एक्सपर्ट बन जाए? दुआएं देने में एक्सपर्ट हो जाए। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। तो ये कार्य आज करने, तो आज 4 कार्य करने हैं। 3 सूत्र हमने देखे। पहला, टाइम टेबल बनाओ, वो कब बनाना है? अमृत वेले 2 से 5, मुख्य रूप से 3 और 4 के बीच, क्योंकि 2 और 3 का जो समय है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो तो अमृत पीने का समय है। डोंट डाइल्यूट द नेक्टर, उस नेक्टर को डाइल्यूट नहीं करना है, कि वो तो अमृत पान का समय है, जिसमें अमृत भर झरझर बहता है, आत्मा शरीरी होती है। तो 3 और 4 इसके बीच में क्या बनाना है? टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बनाओ। दूसरा, कर्मयोग, दूसरों की सेवा में सुबह से लेकर रात तक दूसरों की सेवा में लगे, खुद की सेवा कब करेंगे? और तीसरा, सबको दुआ है। ये 3 पॉइंट उसी के हैं, स्माइल मेडिटेशन, दुआ, रात को सोते समय प्रेयर, और रात में एक ये चित्र। तो आज की कविता, उससे पहले जो कल टेस्ट हुई थी उसके रिजल्ट, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से 100% वाले 2 ही लोग हैं, एक तो विट्ठल भाई और दूसरे अरविंद भाई। और भाइयों में और बहनों में दो बहनें हैं, एक तो क्रांति बहन और दूसरा डॉक्टर रम्या। बाकी लोगों के 98 वाले बहुत सारे हैं, और मधुबन वाले भी बहुत सारे हैं, टोटल 9 लोग हैं। बाकी लोगों को 98 98 वाले बहुत बड़ी लिस्ट है, पर 100 इज 100 उसका कोई 100 मीन्स 100, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट। हाँ दिल से पढ़ाई करो वो ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, फिर भी फर्स्ट इज फर्स्ट। वो चाहे कितना भी कोई कहे कि हम तो धारणा के लिए पढ़ते हैं, हम तो बाबा की पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं, वो सब ठीक है, फिर भी एग्जाम इज एग्जाम एंड टॉपर इज टॉपर। तो जो टॉपर है वो टॉपर ही है, उसमें एक अलग प्रकार की चमक होती है चेहरे पर, चेहरे में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो देख लो उधर एक बार, वो देखो विट्ठल भाई का, वो क्रांति बहन के चेहरे में जो मुस्कान और वो है अलग ही है, उसमें कोई एक अलग ही नशा है। चाहे फिर कुछ भी कहो, टॉपर इज टॉपर। ओम शांति। वैसे टोटल 2443 लोगों ने टेस्ट दी, उसमें से 204 लोगों को 100 में से 100 आए हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले में मैक्सिमम 94 है, 330 लोगों ने वो टेस्ट दी कल की। फिर बाकी भी बहुत सारे भाई है, जैसे मधुबन वाले, ये शंभू भाई, संगीता बहन, नम्रता बहन, सपना बहन हॉस्पिटल, नमिता बहन, बस। ओम शांति।
ओम शांति। मैं पन के रूप हजार, ऐसे तो पॉजिटिव में भी हजार है तो नेगेटिव में भी हजार है, है ना बाबा। मुरली में कई बार नेगेटिव की भी बातें बताते हैं कि मैं पन की चिड़िया आकर के फल को जूठा करके जाती है, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं पन आता है तो मूर्ति खंडित हो जाती है, ऐसे कई मैं पन में भी नेगेटिव बातें, लेकिन हम पॉजिटिव के बारे में ही बताएंगे। ओम शांति। मैं पन का रूप हजार, स्वमान में मैपन हजार करे माला माल, स्वमान में मैपन हजार करे माला माल, स्वमान की मैं की मशाल मैं हूँ बेमिसाल, स्वमान की मैं हूँ मशाल मैं हूँ बेमिसाल, मैं चमकता दिव्य सितारा बाबा के नैनों का तारा, मैं जग को रोशन करने वाला सफलता का सितारा, मैं सपूत बन करता कमाल, मैं दुख दुविधा की मिटाता धमाल, स्वमान में मैपन हजार करे माला माल करे माला माल, मैं विश्व कल्याणी मैं वरदानी, मैं जगदम्बा दुर्गा मैं महाकाली, मैं सरस्वती लक्ष्मी धन देने वाली, मैं परमात्मा तख्त नशीन प्रभु प्रिय एक व्रता, मैं पवित्रता की देवी करती दिव्य श्रृंगार, मैं पन के रूप हजार करे माला में, मैं शिव की शक्ति चैतन्य ह्यूमन गंगा, मैं खुदाए खिदमतगार सेवा करती चंगा, मैंने सप्त रंगों से जीवन को रंगा, मैं विश्व मार्गदर्शक मैं हूँ शिव शक्ति पंडा, मैं पन के रूप हजार करे माला माल करे माला माल। ओम शांति।
मन मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभत काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। थामले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरे, थामले तप की मशाले, पाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप काना कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल उठ चल कर तम का। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी तूठे तो विश्व सवरेगा, तू जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वे